शांति।
इंद्रियों में एक शब्द हमेशा आता है, माया मच्छिंदर। सुना माया मच्छिंदर का खेल, गुल बकावली का खेल, माया मच्छिंदर का खेल, अल्लाह अवलदीन का खेल। मूल्यों में बहुत सारी चीजें आती हैं। माया मच्छिंदर का खेल क्या है? किसे कहते हैं माया मच्छिंदर का खेल? किसी को पता है? मूल्यों में आता है, सबने सुना है। नाथ संप्रदाय के जो गुरु थे, मच्छिंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ भी उनको कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले हठ योग, जो योगासन 21 तारीख को आपने किए होंगे या देखे होंगे, उसके जनक और जिसने उसका प्रचार किया वो गुरु मच्छिंद्रनाथ थे। उनका एक शिष्य था गोरखनाथ। मच्छिंद्रनाथ कभी किसी घर गए और उस गृहिणी ने कहा कि मुझे कोई पुत्र नहीं, उन्होंने कोई राख दे दी, परंतु उस गृहिणी ने वो राख कहीं रख दी। 12 साल के बाद लौटे तो गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ ने पूछा क्या हुआ बेटे का? वो कहती है बेटा तो हुआ ही नहीं, राख तो वहां चली गई। और वो उस राख को दृष्टि देते एक बच्चे का जन्म लेता होता है, जिसको वो युवा ही जन्म लेता है, जिसको वो नाम देते हैं गोरखनाथ, और कहते हैं अब मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूं। वो बहुत रोकती है पर वो नहीं मानते। मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ को अपने साथ लेके जाते हैं। तपस्या चालू रहती है आश्रम में। एक दिन मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ को कहते हैं अब तुम जाकर हिमालय पर जाकर तपस्या करो। गोरखनाथ की तपस्या पूरी होती है, नारद आकर बताता है या हनुमान आकर बताता है शायद कि तुम्हारे जो गुरु है ना, स्त्री मोह में फंस गए। उसे यकीन नहीं होता है, मेरे गुरु हो ही नहीं सकता। और इधर दिखाया है मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंद्रनाथ, एक कामपुर दिखाया है जहां केवल स्त्रियों का राज्य होता है, पुरुष आ नहीं सकता। वो मच्छिंद्रनाथ उस कामपुरी में पहुंच जाते हैं और वहां की जो रानी होती है तिलोत्तमा, उसे ये स्वीकार ही नहीं कि उसके राज्य में कोई पुरुष आए। वो आदेश देती है उसको पकड़ के लाओ, उसको मार दिया जाए। परंतु मच्छिंद्रनाथ बहुत तपस्वी योगी होते हैं, उनके पास इतनी शक्तियां होती है कि वह सारी पावर उस रानी की परास्त हो जाती है। और फिर वो रानी हार मानती है और मच्छिंद्रनाथ को कहती है आप मेरे महल में चलो। वो कहते हैं हम तपस्वी है सन्यासी, किसी स्त्री के महल में हम नहीं जाएंगे। वो कहती है मैं आपकी प्रशंसा करती हूं, आपका तेज, आपका प्रताप, आप आएंगे तो हमें खुशी होगी। तो वो जाता है, उन्हें मेहमान बनकर रखा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ मच्छिंद्रनाथ जमीन पर सोते, वो आकर कहती है कि आप तो मेरे मेहमान हो, आपको तो गद्दे पर सोना चाहिए। वो कहता है मैं कैसे सो, मैं सन्यासी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं योगी हूं, हम तो नीचे ही सोते हैं। पर वो कहती है आप पर इस समय हमारे मेहमान हो। तो वो मान जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के जैसा हृदय होता है, दूसरों को पीड़ा नहीं देना चाहता है संत, गद्दे पर सो जाता है। वो कहता है मैं आपके पैर दबाऊं? वो कहता है बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड। वो कहता है मुझे सेवा का कुछ तो अवसर दो। तो फिर से हृदय पिघल जाता है। वो कहता है ठीक है दबाओ। और पैर दबाते दबाते प्यार ही हो जाता है। और प्यार होते होते शादी हो जाती है और शादी के बाद बच्चा भी हो जाता है, किसको? गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, सबसे बड़ा योगी उस समय का, जिसने अपने शिष्य से कहा था, जब उसने पूछा था माया क्या, तो उसने कहा था काम विकार, जाओ जाकर तुम तपस्या करो। और जब उस शिष्य को पता चलता है मेरे गुरु और काम फंस गए, अब वो संकल्प लेता है मुझे कुछ भी करके अपने गुरु को बाहर निकालना है, और वो भी थोड़ा सा छद्म वेश धारण करके, स्त्री का वेश धारण करके उस राज्य में प्रवेश करता है और वहां पर कहता है अलख निरंजन। ये अलख निरंजन कहने वाले नाथ संप्रदाय होते हैं। तो तुरंत मच्छिंद्रनाथ को भान आता है कि अरे ये तो मेरा शिष्य है, पर अभी बीच में पत्नी है, वो इतने आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। तो बहुत सारा दिखाया है उसमें कि वो इतने कोशिश करता है अपने गुरु को वापस लेके जाने के लिए, परंतु पत्नी जाने नहीं देती। कभी तो वो जो शिष्य होता है उसको मारने की कोशिश करती है, कभी उसको जेल में डाल देती है, बहुत सारा कुछ करती है, पर जाने नहीं देती अपने पति को। और पत्नी भी, अब पति भी पत्नी की मोह में है, तो वो भी कैसा जाएगा। शिष्य कहता है अरे गुरुदेव आपको विश्व कल्याण करना है, आप कहां फंस गए? वो कहता है नहीं नहीं विश्व कल्याण तुम करो, मैं अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान जीवन जीऊंगा, तुम्हारे जैसा भगोड़ा मुझे नहीं बनना है, पलायनवादी सबके बीच में रहते हुए तोड़ निभाते हुए। पर गोरखनाथ तो बिल्कुल दृढ़ निश्चय होता है, वो कहता है कैसे भी करके मैं अपने गुरु को ले जाऊंगा यहां से। फिर बहुत सारा कुछ दिखाया है उसमें, दूसरा राज्य आक्रमण करता है, वो उनका बेटा को भगा के लेके जाता है, गोरखनाथ अपनी शक्ति से उसे वापस लाता है। परंतु दिखाया है गोरखनाथ को भी एक सूक्ष्म अहंकार हो गया है कि मैं अपने गुरु को लेके ही जाऊंगा, जो उसमें फंस गया है माया में। वो जो बेटा होता है उसको वो मार देता है, सांप से कटवाता है, बेटा मर जाता है। गोरखनाथ कहता है मैं अभी इस बच्चे को जिंदा करूंगा, उसकी पत्नी को कहता है अगर ये जिंदा हो गया तो तुम मुझे अपने गुरु को दे देना, तब कहीं वो मानती है ठीक है। तो वो जिंदा करने जाता है पर बेटा जिंदा नहीं होता है, प्रकट होते वो नए के रूप में। कुछ दिन पहले वरदान था अपमान और अभिमान, जिसके पास जितना बड़ा अभिमान उसका अपमान भी उसको ज्यादा महसूस होता है, मुझे क्यों नहीं, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मैंने इतना अच्छा सब किया मुझे सुना नहीं गया, अपमान महसूस होता है। और अभिमान, मैंने ये किया मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया, याऊं किया त्याऊं किया। मुम्मा का सबसे बड़ा उदाहरण है, डेढ़ मास तक मुम्मा बैंगलोर में थी, डेढ़ मास के बाद आई, डेढ़ मास में बैंगलोर में बड़ी बड़ी सेवाएं की। मम्मा से पूछा गया मम्मा क्या क्या सेवाएं हुई, कैसी सेवाएं हुई? मम्मा ने कहा सेवा अच्छी थी, फुल स्टॉप, बस कोई वर्णन नहीं। अब वो किया कुछ नहीं, सेवा कैसी थी? अच्छी थी, फुल स्टॉप। वो तो साथ में जो भाई था उसने बताया कि यहां इतना सारी सेवा करके आई मम्मा, कोई वर्णन नहीं सेवा का, इतना अच्छा गुण है। और यदि हम सेवा कर दे तो उसके इतने सारे फोटो और उसके इतने सारे ये और उसके सोशल मीडिया, और किसी ने ऐसे नहीं भेजा तो दुख, और हमने 50 फोटो पोस्ट कर दिए सुबह उठते ही अमृत वेला बाबा को गुड मॉर्निंग करने से पहले, कितने लाइक्स आए। बहुत उसकी चर्चा, एक मास तक उसका वर्णन कि हमने ये किया हमने वो किया, हमने ऐसा किया हमने वैसा भी किया, हम ये भी करते हैं हम वो भी करते हैं। और अम्मा, अम्मा के ये उत्तर बहुत अच्छे हैं, सबको याद रखना है। कभी भी पूछा जाए सेवा कैसी थी तो क्या कहेंगे, अच्छी थी बस। बहुत ज्यादा उसका विस्तार और उसको मॉडिफाई और उसका अतिशयोक्ति एग्जैजरेट करने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं। हम क्या सेवा कर रहे हैं, एक प्रश्न है। सेवा तो दादियों ने की है, वरिष्ठ भाई बहनों ने की है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। और संगम युग पर जो सेवाएं हो रही है परमात्मा शक्तियों के द्वारा हो रही है। क्या ऐसा कोई कह सकता है ये मैं कर रहा हूं? जानकी दादी ने कभी प्रश्न पूछा था, तुम सब कौन हो, सेवाधारी हो, निमित्त हो या कठपुतलिया हो? सुंदर प्रश्न, तुम सब कौन हो, सेवाधारी हो, निमित्त हो या कठपुतलिया, और सबसे बड़ा कौन तीनों में, यह भी प्रश्न था। क्या कहेंगे, सेवाधारी सबसे बड़ा, निमित्त सबसे बड़ा या कठपुतली सबसे बड़ी? निमित्त और कठपुतली, कठपुतली क्यों? कठपुतली का अपना कुछ रहता है क्या? निमित्त को फिर भी रहेगा, मैं निमित्त हूं, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, ये सेंटर, ये सेवा, ये डिपार्टमेंट, ये महकमा, ये चीज के लिए मैं निमित्त हूं। मैं अभी भी है, अंदर से धक्के दे रहा है, ये कहने में भी मैं निमित्त हूं भी निमित्त मात्र कह रहे हैं, अंदर से मैं ने किया, ऊपर से बाबा ने कराया। स्टेप्स है, पहली स्टेप है सेवाधारी। सेवा, सेवाधारी बनना भी बहुत बड़ा भाग्य है। संसार के लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, सेवा यज्ञ में सेवा करना बहुत बड़ा भाग्य है। सेवाधारी धीरे धीरे से निमित्त भाव आए कि हमें केवल निमित्त बनाया है। वो चाहता तो किसी और को भी बना सकता था, हमसे योग्य लोगों की कमी नहीं है संसार में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वो भी कर सकते थे और शायद अच्छी कर सकते थे, फिर भी मुझे निमित्त बनाया है। और उसके भी ऊपर की स्टेज है कठपुतली, कठपुतली ऊपर से, उसका अपना कुछ है ही नहीं, संपूर्ण समर्पण की अवस्था है कठपुतली, पिचक जाती है अगर ऊपर से छोड़ दिया गया तो धागे। तो एक माया स्थूल है, एक माया सूक्ष्म है, पांच विकारों के सूक्ष्म रूप। तीसरी माया है रॉयल माया, जिसको माया समझा नहीं जाता, जिसको हम नॉर्मली चीज है ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, परंतु वही माया है, उसी रॉयल माया की हम चर्चा करेंगे। स्थूल की नहीं, सूक्ष्म की नहीं, रॉयल की, ए से लेकर तो एच तक। ए अर्थात सब जानते हैं, शब्द सुने हैं, आलस और अल्बेनापन। एक है आलस, एक है अल्बेलापन, दोनों में अंतर है। आलस स्थूल है, अल्बेलापन सूक्ष्म है। आलस तन का है, अल्बेलापन मन का है। एक बार ज्ञानामृत में एक आर्टिकल आया था, मुरली न सुनने के 108 कारण। घर में मेहमान आ गए, बारिश आ गई, पीठ में दर्द, थोड़ा सा बुखार लग रहा है, आया नहीं है, लग रहा है, आ सकता है, और बाबा को पता है बुखार है, पहले ही रात को बोल दिया था कि थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, अमृत वेले का नहीं हो पाएगा, कल देख लेना, खुद को थोड़ा सुरक्षित कर दिया है, क्योंकि बाबा को तो पता है ना बुखार जैसा तो लग रहा है, टेम्परेचर ए वो मत चेक करना, नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगी, लग रहा है बस बोल दिया, चेक मत करो बस। थकान, ऐसे बहुत सारे कारण थे, 108 एक अज्ञानामृत में थे। तीव्र पुरुषार्थ में सूक्ष्म माया, रॉयल माया, आदत क्या है, और आलस आदत बन गई है। अभी अभी मुरली चली थी परसों शायद, चुस्त टीचर वो है जो 8 से 10 सेंटर चला है, संभाले। आराम हराम है, नींद कैसे कितना घंटा रहे, 5 से 6 घंटा करे, और भागती दौड़ती रही, जो 3 बातें थी चुस्त टीचर की क्वालिफिकेशन, अभी भी थी ना परसों, भागते रहे दौड़ते रहे, ये चुस्त टीचर की निशानी है। टीचर अर्थात खाली बहने नहीं, हर एक टीचर है यहां पर। टीचर बनने की फैक्ट्री खोली है भगवान ने, तो स्वयं को चुस्त बनाना है, जो सूक्ष्म आलस है और जिसको हम शरीर की बीमारी का नाम दे रहे हैं, ताकि सुरक्षित रहे, ताकि सांत्वना भी मिल जाए दूसरों से, हां तुम बीमार हो आराम करो। गला घुट जाना चाहिए इतना तुम सेवा करते रहो, बाबा कहते हैं। ज्ञान सरिता बहती रहे, अथक थकान न हो, और शरीरी बन के ऊपर से आबू रोड तक भी चले जाओ तो थकोगे नहीं, मुरलियों में आता है। थकान का संबंध शरीर से कम मन के संकल्पों से ज्यादा है। जो कहता है मैं बहुत थक गया, समझ लेना व्यर्थ संकल्प बहुत चले हैं सेवा के दरमियान, इसलिए थकान है, नहीं तो सेवा नहीं थकाती। पर सेवा के बीच में होने वाला संघर्ष, तनाव, संस्कारों की टक्कर, फ्रिक्शन, वो ज्यादा थकाता है। ईर्ष्या थकाती है, कंपटीशन थकाती है, उन्होंने वो किया हम भी करेंगे, वो ऐसा करते हैं हम भी करेंगे, ये थकाएगा। बाकी सेवा नहीं थकाती। और ये अपने जीवन में देखना है कौन से काम, कौन सी सेवाएं मैंने अब तक नहीं की है आलस्य के कारण। और सबसे बड़ी एक चीज वो है चिंतन। मुरली का चिंतन न करना भी आलस्य है, नए नए टॉपिक्स पर न लिखना भी आलस्य है, सेवाओं में नई आइडियाज निर्माण न करना भी आलस्य है। सोचो वो कौन सा एरिया है पूरे शहर में जो अब तक जहां सेवा नहीं है, चार्ट ढूंढो, इंटरनेट से मैप निकालो, कौन सी एरिया है, कौन सा मेडिकल कॉलेज, कौन सा डेंटल कॉलेज, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज, कौन सी कंपनी, कौन सी आईटी विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा महकमा अभी भी रहा हुआ है जहां पर हम नहीं पहुंचे, वो आदिवासी लोग कौन है, वो लोग जिन तक हम नहीं पहुंचे, श्रमिक लेबर्स, गली गली में ज्ञान की दुकान हो। अभी भी वरदान में था लास्ट लाइन, क्योंकि आत्मा जल रही है, आग है आग, चिंता समस्याएं तनाव, ये न करना भी आलस्य। सुबह अमृत वेला उठना, अमृत वेला करना, अमृत वेले के बाद व्यायाम करना, व्यायाम के बाद मुरली सुनना या सुनाना, उसके बाद में भोजन बनाना याद में, भोजन खाना याद में, फिर ट्रैफिक कंट्रोल करना बीच बीच में सारे दिन भर, नमा शाम का योग करना, रात में मुरली की थोड़ी चर्चा करना या मुरली पढ़ना, रात में बाबा को गुड नाइट करके सो जाना, ये है साधारण पुरुषार्थ। क्या है ये, कौन सा ये जो बताया, कौन सा, अमृत वेला करना पावरफुल, फिर मुरली पढ़ना पढ़ाना, फिर भोजन याद में बनाना खाना, फिर बीच बीच में अमृत वेला ट्रैफिक कंट्रोल करना, नुमा शाम का योग करना, मुरली चर्चा करना, चार्ट वगैरह लिखना और गुड नाइट करके सो जाना, इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। फिर तीव्र क्या है, तीव्र कुछ और होना चाहिए, ये सारी ही चीजें डबल फोर्स से करना, डबल अवेयरनेस, डबल माइंडफुलनेस, होश में करना, शक्तिशाली रीति से करना, नए तरीके से करना, नवीनता लाना, ये है तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ की एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने परिभाषा दी है 83, जो स्थिति एक सेकंड पहले थी अगले सेकंड स्थिति आगे चाहिए। अभी भी वरदान में भी थी ये पॉइंट कुछ दिनों पहले। इसे कहा जाता है फास्ट पुरुषार्थ। एक दूसरी अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की परिभाषा दिया, जो गलती एक बार की वो फिर से न करना, यह है तीव्र पुरुषार्थ। ऐसा नहीं कि गलतियां करते जाओ, बाबा को माफी मांगते जाओ, डायरी लिखते जाओ, बाबा सॉरी बाबा सॉरी, रोज गलतियां करो और रोज लिखो सॉरी। किसको ब्राह्मण परिवार की रीति रस्म नहीं बनाना है। 3 P's, पाप, पाप करना, पश्चाताप करना, पार्डन, माफी मांगना। बाबा ने एक मुरली में कहा है इसको ब्राह्मण परिवार की रीति रस्म नहीं बना के रखना। पाप बार बार करो, फिर पश्चाताप करो, फिर माफी मांगो। पाप, पश्चाताप, माफी, डोंट कन्वर्ट दिस इनटू ट्रेडिशन ऑफ ब्लूमिंग लाइफ। ये कस्टम नहीं है, तो वो कारण धन नहीं जो हम नहीं कर रहे, और कारण केवल आलस है। अलबेलापन अर्थात केयरलेसनेस। सेवा दी गई है, ये सेवा करके आओ, थोड़ा सा किया और ऊपर ऊपर से करके आ गए। इससे तो ना कहा होता तो अच्छा होता ही, परंतु दिल से नहीं की ही, पर ऊपर ऊपर से करके खत्म करना है, करके काम चलाऊं। सेवा करो तो पूरे दिल से, मन से, फ्रांक दिल से, खुले दिल से, बड़ी दिल से। वो हर जगह जहां पर आत्माओं का दिल बहुत बड़ा है, धन संपत्ति चरणों में आके गिरेगी। दिल को बड़ा करना है, अपने आप से बढ़ेगा। ये पहला पहली माया ढूंढना है मेरे जीवन में कहीं तो नहीं, आलस, सूक्ष्म और बेलापन। दूसरा है बी, बहानेबाजी। हर चीज में बहाना बनाना, सेवा दी नहीं, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, सिर में दर्द, भारीपन, अच्छा नहीं लग रहा है, घर में मेहमान, बच्चों की एग्जाम, स्कूल, पढ़ाई, हजार कारण है और ये कारण कभी समाप्त नहीं होंगे। ज्ञान के लिए बहानेबाजी, योग के लिए बहानेबाजी, सेवाओं में बहानेबाजी, तीन प्रकार है। सेवा दी कि बहाने चलू, बाकी टाइम बहुत है बाकी सब चीजों के लिए। मोबाइल पर बैठकर सर्फिंग के लिए और वो चेकिंग के लिए टाइम बहुत है, सेवाओं के लिए टाइम नहीं है, चिंतन के लिए टाइम नहीं है। बहाने हैं वहां पर, हमारा चिंतन चलता नहीं, हमारी बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, तुम्हारा चलता है, हमारा नहीं चलता है। अगर कोई हमको कोई कह दे रात को 10 बजे फोन करके गालियां देने लगे और अच्छे अच्छे आरोप लगा दे तगड़े तगड़े, रात भर चिंतन, सुबह तक किताब लिखी जा सकती है जिसने हमको आरोप लगाए। कोई आके कहे कि मैंने आज सुबह तुमको अमृत वेला सोते हुए देखा था बाबा के कमरे में, तो हमको अगर किसी ने ऐसा कह दिया तो रात भर हम निकालेंगे ये कितनी बार सो रहा था, कल इसको जरूर बताएंगे। पावरफुल चिंतन, 10-10 पॉइंट निकलेंगे पूरी। अब कहां से आई शक्ति? ज्ञान का चिंतन करो, हमारा तो चिंतन, हमारी बुद्धि कमजोर है, हमको मुरली याद नहीं रहती है। और ये चिंतन में तो रामायण लिखी जा सकती है सुबह तक। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेवलप करना है, जानना है। नो एक्सक्यूजेस। मिलिट्री में एक नियम है, देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। ना मत कहो, कारण मत बताओ, करो और मरो, ये मिलिट्री के नियम है। देर इज बट टू डू एंड डाई, खत्म। ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहानेबाजी की बाजी को बंद करो और उड़ती कला की बाजी को अपनाओ। अब जब तुम्हें बात कहते हैं दादा की, ये दूसरी माया। तीसरी माया और एक है कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस, सुख और सुविधाएं। ये दो तो हम सेवा करेंगे, नहीं तो हमसे सेवा नहीं होगी। ये सब चाहिए तो सेवा होगी, नहीं तो नहीं होगी। सुखों का आदि है व्यक्ति और तपस्या साधनों के अभाव में होती है या विपुलता में। बहुत सारे साधन दिए हुए, जब अभाव का सेवा साधनों का यज्ञ में बेगरी पार्ट में सबसे ज्यादा साधना तब होती है। तो सब कुछ दिया गया है तब करना कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी न हो उसमें तपस्या होती है। और सुख सुविधाएं एडिक्टिव है, व्यसन व्यसन की तरह व्यक्ति को खींच लेती है। ये भी माया का वर्तमान समय एक सूक्ष्म रूप है, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। कितने भी सुख सुविधाएं दे दो, क्या ऐसा हो सकता है कि तब हमको लगे हम ज्यादा तपस्या करेंगे? शायद नहीं। वास्तव में तपस्या विपरीत परिस्थितियों में की जाती है, अनुकूल परिस्थितियों में नहीं। संपन्न हमें विपरीत परिस्थितियों में बनना है। सब खींचातान चल रही है, कोई खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस परिस्थितियों में संपन्न बना जाता है। शांति से कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक है, वहां संपन्न बना नहीं जाता है। तूफानों में और आंधी में संपन्न बना जाता है। तो ये जो एडिक्शन है कन्वीनियंसेस का, साधन ही साधन और तपस्या साधनों में खो गई, साधना साधनों में खो गई, है तो उपयोग करो, ना है तो भी ठीक, है तो ठीक, ना है तो ज्यादा ही ठीक। पर एडिक्शन, डिपेंडेंस, डिपेंडेंसी, अधीनता, उसके ऊपर इतनी ना हो जाए। ये तीसरी माया है, ABC। डी दैहिक आकर्षण, शरीर का आकर्षण। शरीर को देखना सुंदर है, असुंदर है, गोरा गोरी, काला काली, देह की तरफ आकर्षित होना माया की शुरुआत है। जो पहले भी बताया, देह के वास्तविक स्वरूप को जानना है, देह है क्या। कहा जाता है महात्मा बुद्ध के पास कोई शिष्य आता था संन्यास्त होने, वो कहते थे जाओ पहले 3 मास शमशान घाट पर, केवल देखते रहना चिता को जलते हुए, लोगों को रोते हुए, कैसे बचा पाओगे वैराग से स्वयं को। ये जीवन का सत्य है, जीवन का अंतिम सत्य यहां मृत्यु। ये अब तक भाग दौड़ जो चल रही थी ये है परिणति, द लास्ट रिजल्ट, इफेक्ट, रेमिफिकेशन। क्यों भाग रहा है व्यक्ति? भागे जा रहा है। चिताओं को देखो और वो आंख को देखकर वैराग जागेगा। महात्मा बुद्ध जब घर छोड़कर निकल जाते हैं, वो उनका सारथी होता है चन्ना, वो कहता है कि पीछे एक बार मुड़के तो देखो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा राजभवन, वो तुम्हारा सम्राट होने की संभावना, सब कुछ तुम्हें पीछे एक बार मुड़कर तो देखो। इतना बड़ा तुम्हारी राजभवन, राज्य, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बच्चा, एक बार पीछे तो मुड़के देखो। महात्मा बुद्ध पीछे देखते हैं और कहते हैं मुझे केवल चिताएं नजर आ रही है, लपटे आग की, और कुछ नहीं। देह और देह का सौंदर्य भ्रमक है, इल्यूजन। सारी माया इस आकर्षण से चालू होती है। युवक युवतियां, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तथाकथित प्रेम जिसको वो कहते हैं, प्रेम नहीं है, वासना है, प्रेम नहीं काम का ही रूप है। इस सूक्ष्म की सूक्ष्म रूप को जानना इस ब्राह्मण परिवार के अंदर भी। बाबा ने कहा है भाई बहन के संबंध में भी माया आ सकती है, जिसको बहन गौन समझ रहे हैं उससे भी, जिसको भाई समझ रहे हैं वो भाई की बजाय विशेष भाई बन जाता है, विशेष बहन। राखी बांध रहे हाथ को ही पकड़ने का संकल्प भी कम नहीं है। इसलिए देह क्या है, देह की वास्तविकता क्या है, वो सारे हमने हमारे मधुबन के ग्रुप में एक बार लिस्ट बनाई थी, कौन कौन सी जगह पर जाना चाहिए जहां से बाहर आ रहा है, हॉस्पिटल, शमशान घाट, झोपड़िया, मॉर्चुरी, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, दिस आर द ट्रुथ्स ऑफ लाइफ। जीवन की सत्यता ये है, ना कि वो जो फिल्में और वो सब में दिखा रहे हैं, सब कुछ नॉनसेंस। जो तथाकथित सीरियल्स और ये सारा जो दिखाते हैं, सब कुछ व्यर्थ है, जीवन का सत्य उसमें नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, स्वयं की चेकिंग कर रहे हैं। तो डी अर्थात दैहिक आकर्षण, ए बी सी डी ई, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल माया, माया को बहुत दुख हुआ शुरुआत में जब ब्राह्मण आत्माओं ने सिनेमा घर में जाना बंद कर दिया, सबसे बड़ा आघात लगा उसको, क्योंकि सिनेमा सबसे बड़ी माया थी, सिनेमा घर, मल्टीप्लेक्स थिएटर। परंतु उसको थोड़ी राहत मिली जब घर घर में टीवी आ गया, उसने अपनी चाल खेली तो घर घर में टीवी। फिर उसको थोड़ा दुख हुआ जब कुछ कुछ पक्के महावीर ब्राह्मणों ने टीवी देखना भी बंद कर दिया, जो कहते थे हम टीवी ये सब नहीं देखते, सब फालतू है, तब माया को थोड़ा ठीक लगा। नहीं, माया को तब भी दुख हुआ, सुख तो इसलिए मिला कि टीवी आ गया और कुछ कुछ अच्छे अच्छे बच्चे उसमें फंस गए, पर फिर भी कुछ कुछ छूट गए। फिर माया ने अपनी तीसरी चाल चली, कौन सी, हरेक की जेब में ही डाल दी, पर उसमें भी कुछ कुछ महावीर थे जिन्होंने कहा ये मोबाइल हम कभी नहीं यूज करेंगे। चौथी चाल चली इंटरनेट, अंतरजाल, इंटरनेट। और जिनको घूमना है और जिनको इंटरनेट का प्रयोग करना है और जानकारी हासिल करनी है, उसके माध्यम से इंटरनेट उसने प्रवेश किया। और उसके बाद एक पांचवी चाल भी और चली, सोशल मीडिया, और धीरे धीरे जकड़ लिया। सुंदर प्रश्न है एक छोटा सा, इंटरनेट फ्री है या हम? इंटरनेट फ्री है या हम? फ्री कौन है, वहन की चेकिंग करनी है। हम हमेशा क्लासेस में छोटी सी कहानी बताते हैं, शायद आप लोग जानते भी होंगे। एक व्यक्ति होता है और जिसको सोते से ही भयंकर स्वप्न दिखते हैं, उसकी जो खटिया है उसके नीचे शेर, बिच्छू, टिंडन, सांप, अजगर, रोज एक ही स्वप्न, और जब भी उठता है धड़ धड़ और दुख और उदास और डरा हुआ सा। रोज गांव वाले उसको देखते पूछते आज क्या हुआ, वही स्वप्न। डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, दिखा दिया। रोज नए डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, इसको दिखाया, उसको दिखाया, उसको दिखाया, उसको दिखाया, MRI, CT स्कैन सब करा लिया, सब नॉर्मल, किसी में कुछ भी नहीं आता है, पर स्वप्न चालू है, एक ही स्वप्न। रोज रात में खटिया जो है उसके नीचे खतरनाक जानवर दिखाई देते हैं, और एक दिन अचानक वो व्यक्ति उठता है इतना खुश और खुशी खुशी से जा रहा है। लोग पूछते हैं क्या हुआ, स्वप्न नहीं आया क्या आज? वो कहता है नहीं, मेरा एक दूर का भाई आ गया जो कारपेंटर है, उसने बेड के चारों पैर काट दिए, क्योंकि स्वप्न में उसके नीचे आता था ना वो, तो जो डॉक्टर नहीं कर पाया वो मेरे भाई ने कर दिया, खटिया के चार पैर जो थे उसको ही काट दिए, क्योंकि इन्हीं चार पैर के नीचे सारे जानवर थे, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया। इसको काटा जाए तो आराम की नींद आ सकती है। फिर वो काम का विकार, वो लस्ट का विकार, वो क्रोध, वो जोश, वो आवेश, वो उत्तेजनाएं, उत्पन्न नहीं होंगे। तो क्या प्रयोग ना करें? प्रयोग करना, परंतु केवल ज्ञान योग धारणा के लिए, सेवाओं के लिए, बस इसका प्रयोग। और चिटचैट, इधर से मैसेज, उधर से मैसेज, हैप्पी अमृत वेला, हैप्पी सदगुरुवार, थॉट फॉर द डे। हमने सेवा की 50 फोटो भेज दिए, देखो यही तुम्हारी सजा है, हमने जो सेवा की उसके फोटो देखो। हैप्पी श्राद्ध, हैप्पी श्राद्ध, ऐसा भी भेजा है किसी ने। टाइम वेस्ट, बहुत अच्छी क्लास और फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, बस सुना तो नहीं, पावरफुल क्लास, फॉरवर्ड, जिसको फॉरवर्ड किया वो कहता है अच्छा पावरफुल, डबल पावरफुल करके आगे, सोचते वो सुनना चाहिए, उसका कल्याण हो जाए। कहते ना एक दूसरे, आज मुद्दे तुम्हारे ऊपर चली है, तुम जो अवगुण है ना उसी के चर्चा बाबा ने की, खास तुम्हारे लिए मुद्दी, जैसे हम पूर्ण सर्वगुण संपन्न बन गए, ये क्लास तुम जरूर सुनना, तुम्हारी बातें उसमें है। वो क्लास बेचारा अनाथ घूम रहा है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, उसको सुनने वाला कोई नहीं है, जो भी देखता है वेरी पावरफुल करके आगे भेजता है, सुपर्ब, एक मेल से दूसरे मेल पर जा रहा है बेचारा, कोई तो उसको मिल जाए ध्वनि डोरी मालिक, जो सुने और ग्रहण करे। सुनने का टाइम ही नहीं है, बस भेजना चालू है दिन रात, खुद भी नहीं पढ़ रहे ना ही सुन रहे, खाली भेज रहे, कोई आवश्यकता नहीं। जोक्स, पति पत्नी के जोक्स, टाइम वेस्ट और माया है, इस माया को रोकना है। एफ, एफ से तीन बातें हैं, एफ फॉर फैशन, क्रीम पाउडर मेहंदी डाय, लोगों को पता ना चले हम बूढ़े हो गए, विग गहने कलर व्हाइट, व्हाइट में भी स्टाइल फैशन, संसार की आत्माएं उसमें डूबी है, हम उसमें नहीं डूब सकते। हमारा फैशन पवित्रता है, हमारी फैशन पवित्रता सिंप्लिसिटी सादगी है। दूसरा एफ से है फैमिलियरिटी, दोस्ती, घनिष्ठता, दो व्यक्तियों के बीच में दोस्ती, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के बीच में दोस्ती, फ्रेंड्स, ये जो फैमिलियरिटी है नर्क की ओर ले जाएगी। All spiritual friendship more often than not turns into sensual friendship. इसके लिए स्पिरिचुअलिटी में फ्रेंडशिप ना हो। सभी दोस्त हैं, सभी साथी हैं, सभी सहयोगी हैं, ये बहुत अच्छा है। साकार मूल्यों में आता है कई बार, बाबा ये बहन बहुत मीठी है, ये बहन बहुत मीठी मुरली चलाती है, बाबा ये बहन की पालना बहुत अच्छी है। बाप कहते हैं बच्चू मीठी बहन नहीं मीठी मुरली है। दादी जानकी हमेशा सुनाती है अपना अनुभव, जब शुरुआत में दादी को बाबा ने कोर्स कराने कहा एक भाई को, तो उस भाई का दादी ने कोर्स कराया, बहुत अच्छा भाई था, कोर्स भी उसने बहुत सुना, अच्छे से सुना। और फिर दादी पहुंच गई बाबा के पास, ब्रह्मा बाबा के पास रिपोर्ट करने के लिए कि बाबा ये भाई जो है ना बहुत अच्छा भाई है, इसने पूरा कोर्स सुना, एकदम लगता है सिकिलदा कोई पुरानी आत्मा है, बाबा की एकदम बारिश क्वालिटी आत्मा है। बाबा ये भाई को ना एकदम तीर लग गया। बाबा ने कहा बच्ची तीर उसको लगा या तुमको? फूलों की मालाएं, तारीफ की मालाएं चढ़ाए जा रही है। फैमिलियरिटी, वो एक ही अच्छा लगना, उसकी हर बात अच्छी लगनी, उसका योग अच्छा लगता है, उसका हमें उसका योग अच्छा लगता है, हमें उसका उसकी सेवाएं बहुत अच्छी लगती है, वो जो भी सेवा करता है अच्छा लगता है, उसका हम स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं, भाई ये बहन बहुत ही अच्छी है, इसको सब सेवा देनी चाहिए, ये बोलती अच्छी है, ये बोलता अच्छा है, इसका चिंतन अच्छा है, इसकी चिंतन अच्छा है, प्रशंसा। और प्रशंसा करते 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 प्यार, और फिर उसको कुछ होगा, किसी ने उसको डांटा तो इधर हलचल, उसको किसी ने कुछ कहा तो इधर हलचल, उसको कोई कुछ नहीं कहना चाहिए, वो सबसे अच्छा है, अच्छी है। फैमिलियरिटी, फिर फोन, फिर बात, फिर मैसेजेस, फिर व्हाट्सएप, फिर रूठना और रूठना, फिर मनाना, कभी ये रूठेगा कभी वो रूठेगा, एक मैसेज उधर से एक मैसेज उधर से चालू है। फैमिलियरिटी, मन, एफ फॉर फूड। योगी स्वाद में न डूबा रहे, मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात अव्यक्त महावाक्य के स्वाद से परे। जगदीश भाई ने बहुत सारी चीजें लिखी है, इतना मसाला, इतना मसाला, इतना तेल निकलते हैं करते हुए, मजा नहीं आता है तब तक, जो भी चीज बन रही है सब को तेल में गुजारो, तब वो ज्यादा अच्छी बन जाती है, ज्यादा टेस्टी बन जाती है। थोड़ा थोड़ा करते करते हथौड़ा लगता है, भाई साहब ने लिखा है। विवेकानंद से कभी किसी ने पूछा था, विदेश में तुम्हारे देश का धर्म इतना अच्छा, इतने सारे धर्म है, फिर क्या हुआ, क्यों पतन हो रहा है तुम्हारा? उन्होंने कहा मेरे देश का धर्म चूल्हे चौके में जाके भस्म हो गया है। वेयर किचन इज द रिलीजन एंड कुकिंग पॉट इज गॉड। ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात ये नहीं कि सारा जीवन किचन में ही गुजार दो और सारा जीवन भोजन में ही सोचो कि क्या करना है और क्या खाना है। संयम नित आहार योगी के लक्षण है। योग के लिए दो चीजें खानी चाहिए, अमृत वेला योग के लिए एक बुद्धि और दूसरा पेट। और कम से कम रात्रि भोजन तो कम हो ताकि योग शक्तिशाली हो, नहीं तो गरिष्ठ भोजन और प्रमाद आलस्य निद्रा। जी गॉसिप्स। माया का अगला रूप क्या है? गॉसिप्स। गॉसिप्स अर्थात दावा, क्या कहते हैं उसको? झगमोई झरमोई। इसने क्या किया, उसने क्या किया, उधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, ये सेंटर में क्या चल रहा है, वो सेंटर में, ये बहन यहां थी वहां क्यों गई, ये भाई यहां था वहां क्यों गया, ये पहले इधर था अभी उधर क्यों गया। तुम्हें क्या करना है? बाइबल में दिखाया है जीसस क्राइस्ट 3 दिन के बाद फिर आ जाते हैं सूली लगने के बाद। उनका एक शिष्य पीटर आता है पास में और पूछता है, क्या प्रभु आपका मेरे से प्यार है? वो कहते हैं हाँ। फिर से पूछता है, क्या आपका मुझसे प्यार है? हाँ। क्या आपका मुझसे प्यार है? हाँ। फिर पूछता है, ये जो पीछे जॉन आ रहा है ना, आपका दूसरा शिष्य, क्या इससे भी आपका बहुत प्यार है? वो कहते हैं, व्हाट इज दैट टू यू, तुम अपने काम से काम रखो, तुमसे कहा ना तुमसे प्यार है, उससे कितना है वो मैं देखूंगा, तुम्हें क्या करना है, मेरा उससे प्यार है नहीं है, व्हाट इज दैट टू यू, अपने काम से काम रखो। ताक नाक झोंक, इधर क्या उधर क्या, इसने क्या किया उसने क्या किया, परचिंतन परदर्शन गॉसिपिंग, बैठ के वार्तालाप चर्चा, ब्राह्मण आज के ब्राह्मण संसार समाचार। एक घंटा चर्चा की, इसने ये किया उसने, एक घंटे के बाद अब कल मिलेंगे, फिर से इसी समय, फिर किसी और को पकड़ेंगे, हाँ ये भाई मधुबन में अब तक क्या कर रहा है, जिसको तो अब तक जाना चाहिए था। गॉसिपिंग, उसमें ब्लेमिंग होता है बहुत ज्यादा, ब्लेम गेम खेला जाता है। परचिंतन होता है, परदर्शन होता है, परचिंतन परदर्शन आत्मा के पतन की जड़ है, डिग्रेडेशन ऑफ सोल, जिसके लिए गॉसिप एक ऐसी हैबिट है, आदत है, उससे हमको अपने आप को मुक्त करना है गॉसिप में। और लास्ट है एच, दसवां या दसवीं माया, हाईली सेंसिटिव नेचर, छुईमुई फीलिंग देवी, किसी ने कुछ कहा और आंसू चालू, पिछले एक मास में जो नहीं रोया वो हाथ खड़ा करेंगे, इसका मतलब बाकी सब रोए, रोना प्रूफ अभी बना नहीं है, रोना रूठना रूसना, सेवा कर रहे किसी ने थोड़ा कुछ कह दिया बस उदास नाराज, अब आज से सेवा बंद हम नहीं करेंगे, पहले तो इतनी सेवा करो उसके बाद में स्तुति और प्रशंसा से दूर कुछ और ही कह दिया, रात भर बैठकर किसी ने रंगोली बनाई, किसी ने आके सुबह कह दिया ये भी कोई रंगोली है, उदास मुरझा गए डिप्रेस्ड हो गए, ये तो काटो घिरा मार्ग है, यहां सब कुछ सहन करना है, और जो सहन करेगा वो सहनशाह बनेगा, नहीं तो गिर जाएंगे टूट जाएंगे फूट जाएंगे मूर्छित हो जाएंगे। संवेदनशील स्वभाव, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, रोने वाला नहीं बनाना है, जब देखो तब मुरली सुन भी रहे और ऊपर से रो भी रहे, बाबा बाबा भी कह रहे और आंसू भी चालू है, वो चित्र कैसा रहेगा, दुर्गा मां शेर पर सवार अष्टभुजाधारी और रो रही है और शेर पर भाग रही है, बाबा बाबा बाबा, और पीछे भक्त भाग रहे मां 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 मां, हे मां शक्ति दो दया करो, हे पाप हारिणी, हे महिषासुर मर्दिनी, और मां पीछे देखती और फिर भागती है, बाबा बाबा पहले हमारे दुख दूर करो, बाबा कहते हैं भक्तों की आवाज सुनो, बाबा पहले तुम हमारी आवाज सुनो, भक्त कहते हमारे दुख दूर करो, बाबा मैं खुद ही दुखी हूं पहले आप मेरे दुख दूर करो, और दुर्गा भाग रही है पीछे भक्त, कैसा दृश्य है? अच्छा, मंदिर का द्वार पर्दा खुला और देखा तो संतोषी माता उदास। अतृप्त, पर्दा खुला तो देखा शीतला माता क्रोध में, अग्नि रूप। जैसे हमारे यादगार है ना, उनको देखते रहना पहले मंदिरों में जाके, ये मैं हूं। उसके लिए फीलिंग देवी, छुई मुई, टच मी नॉट नहीं बनना, रोना बंद। भाई कम रोते हैं, रोते भी है तो दिखाते नहीं, अंदर ही अंदर रोते हैं। मन का रोना, इन्वर्टेड कॉमा व्यक्त महावाक्य बाबा की, योग की धूप से आंसू की टंकी सुखा दो। क्या करो? योग की धूप से आंसुओं की टंकी सुखा दो। हमारे उधर एक बहन है, वो कहती है हमारे आंसुओं की टंकी इतनी पावरफुल है कि योग की धूप उसको सुखा नहीं पाएगी। इधर ही रखे है आंसू, यहां बस बटन दबाने की देरी है। उसने बटन दबाया और चालू। रोने में एक्सपर्ट है, हमसे ज्यादा कोई नहीं रो सकता। एक माता आई थी हमारे पास ओपीडी में, वो कहती थी, हमने कहा क्या तकलीफ है? वो कहती है रोना आता है। रोना आता है तो कितनी बार रोते हो? वो कहती थी 28 बार एवरीडे। फिगर भी कैलकुलेट करके रखा है, इतनी बार रोना आता है। किसी ने कुछ कहा, रो दिया। बेटे ने कुछ कहा, रो दिया। पति ने कुछ कहा, रो दिया। हर चीज में रोने के लिए तो तैयार ही बैठे। ये माया है, चिकना घड़ा भव। इस ध्यान मार्ग में चिकना घड़ा बनना पड़ता है। सर्दी गर्मी, आज ही कहा ना, मान अपमान निंदा स्तुति वरदान स्लोगन सब में समान। स्थित प्रज्ञ योगी वो सब कुछ सहन करते। किसी ने एक चित्र भेजा था, उस चित्र में दो थे, हिरण थे। एक जवान हिरण जिसको एक तीर लग गया और घायल। अब वही हिरण बूढ़ा हो गया है, पूरे शरीर में तीर ही तीर है और खड़ा है। यह है परिपक्व योगी। तीर है, घाव है, अपमान के दोष, लोगों ने दोष लगाए, अपमान किया, धोखा दिया, निंदा की, आलोचना की, अविश्वास जगाया, असहयोग दिया, इंसल्ट की, सब कुछ सहन करते हुए योगी खड़ा है। तो फीलिंग देवी नहीं बनना, फीलिंग देव भी नहीं बनना। इधर देवी इधर देव, नारीत्व के संस्कार और पुरुषत्व के संस्कार से परे निकल जाना। रोना नहीं, रोने का मार्ग नहीं। तो ऐसे ये माया के हसीन 10 रूप याद रखना, चिंतन करना और स्वयं को इस माया के प्रभाव से परे लेके जाकर वो जो एक सत्यम शिवम सुंदरम है, एक परम सुंदर है, वो जो हसीन है, तुमसा हसीन बाबा नहीं कोई जहां, ऐसा वो परमात्मा, उसके दिल की प्रीत लगाना। अच्छा, ओम शांति।